समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे में। अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी सुबह से होनी चाहिए और अच्छी सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों से, इसलिए अपनी आदत के मुताबिक हम आज सवेरे के एक और अंक के साथ आप पहुंचे हैं आपके पास। अगले आधे घंटे आप बने रहेंगे सरफिरोजी के साथ, आज भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की सैर पर और देंगे खास जानकारी, बताएंगे मौसम का हाल और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी। आज मेरे साथ हैं नीना।
हेलो सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 12th ऑफ सितंबर। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। फिरोजी
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोडमैप है।
Union Cabinet has given its nod to giving health coverage to all senior citizens who are above 70 years irrespective of income under Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana with an outlay of 3,437 crore rupees. Briefing the media after the Cabinet meeting in New Delhi yesterday, Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav said, "This is a very significant decision and the commitment made by the Prime Minister Narendra Modi in this regard has been fulfilled with this decision." Mr. Vaishnav said the senior citizens will get the facility of free treatment up to 5 lakh rupees. He highlighted that this will cover about 4.5 crore families in the country and include about 6 crore senior citizens. Mr. Vaishnav added that ABPMJ is the world's largest health assurance scheme, which provides health cover of 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to 55 crore individuals, corresponding to 12.34 crore families. The union minister said that the eligible senior citizens would be issued a new distinct card under ABPMJ, the senior citizens of the 70 years and above belonging to families already covered under ABPMJ will get an additional top-up cover-up on to 5 lakh rupees per year for themselves. All other senior citizens of 70 years and above will get a cover-up to 5 lakh rupees per year on a family basis. Senior citizens of the age 70 years and above who are already availing benefits of other public health insurance schemes such as Central Government Health Scheme, Ex-Serviceman Contributory Health Scheme, Ayushman, Central Armed Police Force may either choose their existing scheme or opt for ABPMJ. Senior citizens of 70 years and above who are under private health insurance policies or employees, state assurance scheme will be eligible to avail benefits under ABPMJ.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम पर कुल 70,125 करोड़ की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 62,005 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सभी मौसम में काम करने वाली सड़कें दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित सामाजिक आर्थिक विकास और परिवर्तन लाने में प्रेरक भूमिका अदा करेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी।
इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइजेस तरंग शक्ति 24 इन जोधपुर। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट द IAF इज ऑल्सो होस्टिंग द इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDAX 24 विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे। दिस एडिशन ऑफ IDAX शेड्यूल्ड फ्रॉम सेप्टेम्बर 12 टू 14 विल हैव अ ग्रैंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री होस्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। द इवेंट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेंडली फॉरन कंट्रीज एंड इंडियन ऑडियंस टू विटनेस एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग DPCSUs, DRDO, private industries and top-notch startups. The IDAX aims to showcase indigenous skills and indomitable spirit of the Indian aviation industry to a wide spectrum of decision makers and end users from global air forces participating in Tarang Shakti 2024.
हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।
The filing of nominations for third and last phase of assembly elections in Jammu and Kashmir will end today. 40 assembly constituencies will go to polls in this phase on October 1st. While the scrutiny of the nomination papers will take place tomorrow, the last date for withdrawal of candidature is September 17. The polling for the first two phases of polls in Jammu and Kashmir will be held on September 18 and September 25th. External Affairs Minister S. Jayashankar will be on a two-day visit to Switzerland beginning today. This is the third and final leg of his three-nation visit to Saudi Arabia, Germany and Switzerland. In Geneva, External Affairs Minister will meet heads and representatives of international organizations with whom India is actively engaged. He will also meet the Swiss Foreign Minister to review the close partnership between the two countries and explore avenues to enhance the bilateral relationship further. Earlier yesterday, Dr. Jayashankar called on German Chancellor Olaf Scholz in Berlin and conveyed the personal greetings of Prime Minister Narendra Modi. In football, Manipur's TG English School clinched the junior boys' title of the 63rd Subroto Cup International Football Tournament, defeating Meghalaya's Mingken Christian Higher Secondary School 4-3 via a sudden death tiebreaker after both teams were tied 1-1 in regulation time. The final match was played at B.R. Ambedkar Stadium in New Delhi. It was the third time in history, first in 44 years, that a team from Manipur lifted the coveted trophy.
और 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन ओपन वर्ग में भारत ने मोरक्को को 4-0 से हराया, जबकि महिलाओं की स्पर्धा में भारत ने जमैका पर 3.50 से जीत हासिल की। आर प्रज्ञानानंद ने मोरक्को के खिलाफ भारत की शुरुआती बाजी में तिसिर मोहम्मद को हराकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। वहीं विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने एल्बिलिया जैक्स को हराकर भारत के लिए 4-0 से शानदार जीत हासिल की। महिलाओं की स्पर्धा में जमैका के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी वैशाली ने अदानी क्लार्क को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी नीना।
यस सर फिरोजी, let's go to Chennai first. The Greater Chennai Corporation has tied up with certified trainers who will teach taekwondo moves including close hand strikes, open hand techniques to students. Mayor Priya, who exhibited her skills in self-defense techniques, told that the proposed training will boost the confidence for girls and will equip them with the ability to respond in emergencies. The students will be well trained to compete in national games. There is also a request to extend the training to the boys. More from Chennai. Jabil, a leading supplier for Apple, HP and Cisco, US-based Jabil is investing 2,000 crore rupees in a manufacturing facility at Manaparai near Trichy that could create direct and indirect employment for around 5,000 persons, has signed a memorandum of understanding in Chicago with the Tamil Nadu government. This takes Apple's manufacturing ecosystem in the state beyond Chennai and Krishnagiri. Jabil's facility will provide employment to people in Trichy, Pudukottai, Madurai, Dindigul, Karur and Tanjavur. Over to Bengaluru. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil met foreign diplomats in New Delhi with an invitation to participate in the Global Investors Meet organized in Bengaluru in February next year. M.B. Patil met Defence Minister Rajnath Singh with a request to ease restrictions on defence companies interested in setting up production units in the country. He also requested for a defence corridor in Karnataka. The Industries Minister from the state requested Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to revoke GST on air freight and reduce import tariff on electronics. Lot of action was seen in the 77th Senior National Aquatic Championship in Mangaluru in Karnataka. Tamil Nadu's Pramithi Gnanasekaran, Danush Suresh, Benediction Rohit and Deeksha Sivakumar created a new national record in the 400 meters event with a timing of 4:05:30, breaking the previous record of 4:06:84 held by a team from Maharashtra in the previous year. Riti Agarwal from Telangana touched the pads at 17:45:63 in the women's 1500 meter freestyle. In the women's 100 meter freestyle, tough competition was seen between Mahi Swetraj of Bihar, Shivangi Sharma of RSPB and Aditi Satish Hegde of Maharashtra. However, Mahi finished first with a time of 58:54, while Shivangi and Aditi finished second with 59:17. In the men's 100 meter freestyle, Srihari Natraj from Karnataka came on top with a time of 50:59, followed by Anand of Services Sports Control Board, who clocked 50:77. Now over to Hyderabad. Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan donated 1 crore rupees to Telangana flood relief. He called on Telangana Chief Minister Revanath Reddy yesterday and handed over the check. The meeting comes in the wake of severe floods that have affected both Andhra Pradesh and Telangana states due to incessant rains. Overflowing rivers, including the Muneru, have caused significant flooding. The Muneru rivulet in the state reached record levels, flooding parts of Khammam City. The floods have severely impacted residents, especially in low-lying areas.
और अब आपको जानकारी देंगे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्ली के खेतों में बायो डीकम्पोजर का निशुल्क छिड़काव करवाएगी. इस छिड़काव से धान की पराली को गलाया जाएगा ताकि शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर बन रहे न्यू अशोकनगर स्टेशन पर 900 सोलर पावर पैनल स्थापित किए जाएंगे. इन पैनल को स्टेशन की छत पर लगाया जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 6.5 लाख यूनिट से ज्यादा की बिजली पैदा होगी. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल बोगी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा है और उनका अहिंसा का सिद्धांत वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में दुनिया भर में अभी भी प्रासंगिक है. श्री शेखावत ने कहा कि सरकार रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का पालन कर रही है. और अब बात मुंबई की. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी आज से 15 सितंबर तक मुंबई में थाईलैंड और एनएफडीसी फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है. महोत्सव का उद्घाटन समारोह आज थाईलैंड के महावाणिज्य दूत और एक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में होगा, जिसके बाद थाईलैंड की ओपनिंग फिल्म नेक्रोमेंसर दिखाई जाएगी। इस महोत्सव में थाईलैंड और भारत की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें एनएफडीसी द्वारा निर्मित फिल्में भी शामिल हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी कल श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव संस्थान पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा की। इस दौरान श्री गारसेटी ने कहा कि लॉस एंजलिस के मेयर और भारत में राजदूत के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भगवान गणेश ने उन्हें प्रेरणा दी है। मुंबई के गिरगांव में स्थित श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव संस्था में 1901 में गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। नवी मुंबई नगर निगम को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मंजूरी मिल गई है। इस संस्थान से नवी मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। संस्थान में मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग और बाल चिकित्सा से जुड़ी अत्याधुनिक सेवाएं मिलेंगी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। और एक खबर कोलकाता से भी है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट में शामिल जूनियर डॉक्टर आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सॉल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मंगलवार को प्रमुख स्वास्थ्य सचिव की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की मांग की थी, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। और अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और नीना, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा है?
Yes, Sir Firozi. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब समय है कि आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाया जाए और बताएं कि आज यानी 12 सितंबर का दिन खास क्यों है। आज इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जा रहा है। ये दिन दक्षिणी देशों द्वारा हर साल किए गए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास को रेखांकित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये दिवस विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न सम्मेलनों और वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और आज यानी 12 सितंबर के दिन की इतिहास की कुछ अन्य घटनाएं इस प्रकार हैं। आज ही के दिन 1635 में स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
In 1909, world's first patent for synthetic rubber granted to German chemist Fritz Hoffmann.
आज ही 1928 में फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई थी।
In 1940, near Montignac, France, four teenagers discover a collection of prehistoric cave paintings when they stumble upon the ancient artwork after following their dog down a narrow entrance into a cavern. The 15,000 to 17,000-year-old paintings, consisting mostly of animal representations, are among the finest examples of art from the Upper Paleolithic period.
आज ही 1944 में अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया और 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया।
In 1959, the Soviet Union launched Luna 2, the first space probe to hit the moon, first spacecraft to impact on the moon. In 1962, in a speech at Rice University in Houston, President John F. Kennedy reaffirmed his support for the manned space program, declaring, "We choose to go to the moon this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."
आज ही के दिन 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डानेलेस स्ट्रेट को तैर कर पार किया और 1968 में आज ही के दिन अल्बानिया ने खुद को वर्सा संधि से अलग करने की घोषणा की।
In 1977, South African activist Steve Biko died from injuries suffered while in police custody. He subsequently became an international martyr for South African black nationalism.
आज ही के दिन 1991 में अंतरिक्ष शटल एसटीएस 48 का प्रक्षेपण किया गया।
In 1992, astronaut Mae Jemison became the first African American woman to fly in space as part of the STS-47 Space Lab J mission.
आज ही के दिन 1997 में करीब 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के बाद मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा और 1998 में कुआलालंपुर में आज ही के दिन 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ। 2000 में आज ही के दिन उत्तर पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से एक महत्वपूर्ण समझौते पर भारत, ईरान एवं रूस के बीच समझौता हुआ। 2006 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज ही के दिन अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और 2008 में सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने आज ही के दिन अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया। और श्रोताओं, अब याद कर रही हैं उन हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या इस दुनिया से विदा हुई। शुरुआत कहां से कर रहे हैं नीना?
सर फिरोजी, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जय किशन दयाभाई पंचाल्स डेथ एनिवर्सरी। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज जय किशन। He was a highly influential Indian music composer who, along with his music partner Shankar, formed the renowned duo Shankar Jay Kishan.
जी, जय किशन और शंकर की जोड़ी ने दिल अपना, प्रीत पराई, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी समेत 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। संगीत क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया। आपको सुनाने जा रहे हैं उनके कुछ मशहूर गीत।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
Shankar Jay Kishan worked together from 1949 to 1971. Jay Kishan was known for his work on background scores, romantic songs and catchy hits. Some of their famous works include Barsaat, Awara, Poonam, Badal, Nagina, Aa, Patita, Kalighata and Parbat. They were the most successful and celebrated music directors in the Indian film industry. In 2003, country music legend Johnny Cash, whose craggy baritone, simple poetics, hard-won integrity and advocacy of dispossessed transformed him into an American icon. He died at the age of 71. Here's a song by Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby.
आज ही पुण्यतिथि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। देवकुल, पुरानी हिंदी और संगीत इनकी मुख्य रचनाएं हैं। साथ ही इन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की भी रचना की। इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली अपनी कहानी उसने कहा था के लिए। ये कहानी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। आइए आपको सुनाते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित उनकी इसी कहानी पर बनी टेलीफिल्म का ये अंश।
अब देर करना ठीक नहीं साहब जी, फौरन हुक्म दीजिए, दुश्मन पर तावा बोल देते हैं।
उतावले मत बनो लेना सिंह, थोड़ा सब्र से काम लो।
मैं क्या साहब जी, शिकार वेखण दे बाद शेर ने भी कभी सब्र किया है? दुश्मन सामने खड़ा है, हम यहाँ बैठे हैं।
जंग भी करेंगे
तो फिर दिलवा दीजिए ना हुक्म मारजदा। अपनी संगीन से दुश्मन दी सारी बटालियन को अकेला मार के ना आऊं तो दरबार साधी तैली उससे मत्था टेकना नसीब ना हो साहब जी।
Today we celebrate the birth anniversary of Bibhuti Bhushan, who was a renowned Bengali author and novelist celebrated for his literary contributions to Indian literature, particularly in the fiction genre. He is best known for his evocative storytelling and his ability to capture the beauty and simplicity of rural life in his works. He was born in 1894 in the small village of Jeorapara in Dinajpur district of Bengal, which is now part of Bangladesh. In 1913, Olympic legend Jesse Owens was born in Oakville, Alabama. James Cleveland Jesse Owens was an American track and field athlete who won 4 gold medals at the 1936 Olympic Games. Owens specialized in the sprints and the long jump and was recognized in his lifetime as perhaps the greatest and most famous athlete in track and field history. Today we celebrate the birthday of Kelsey Nicole Ballerini. She is an American country pop singer and songwriter. A 4-time Grammy Award nominee, she has gained success since the 2010s, being honored with the Gene Reed Milestone Award at the Academy of Country Music Awards and the Rising Star Award at the Billboard Women in Music. Here is Half of My Hometown by Kelsey.
Half of my family's happy I left, the other half worries I'll just forget where I came from, same place where they came from. Half of my hometown's still hanging around, still talking about that one touchdown. They're still wearing red and black.
आज ही पुण्यतिथि है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की, जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी। भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया और इस पुरस्कार को प्राप्त करते हुए उन्होंने कुछ यूं कहा था।
I want to devote my remarks to commendation of the Nobel Committee, which has great wisdom, I think, recognized the actual and potential contributions of the agricultural production to prosperity and peace among the nations and peoples of the world. Obviously, I am personally honored beyond all dreams by this election.
Maria Muldaur is best known for her sultry 70s pop song Midnight at the Oasis. She has been a renowned interpreter of American roots music, including blues, gospel, folk and country. These influences were evident on her pop-oriented 70s recordings, as was her Greenwich Village folky background. However, Muldaur became a true roots music stylist in the 90s when she discovered a special fascination with Louisiana's many sounds. Let's listen on to Midnight at the Oasis.
Shadows painting our faces, traces of romance in our hands, heaven's holding a half moon, shining just for us. Let's slip off to a sand dune real soon, kick up a little dust, come.
आज जयंती है बलदेव प्रसाद मिश्र की। ये हिंदी के साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि अर्जित की। बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 किताबें लिखी। इन्हें मुख्य रूप से इनके नाटक शंकर दिग्विजय के लिए जाना जाता है।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.